वासुदेवाय
नमो नमते वासुदेवाय
नारायणं नमस्कृत्यं
नरं
चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ओम ज्ञान विरांदस्य ज्ञानांजन शलाक चक्षुरो मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति सबुदान्तिकं। वन्देहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीशाकान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धौ दीनबन्धौ जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरंगिनाथे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देव प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे। जयताम सुरतोर्पंग मंदवतेर्गतिमत् सर्वस्वदाम भोजो राधा मदन मोहन यम ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमृतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ज्ञानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्त्यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरा सुरगणा देवाय तस्मै नमः। तो अभी तक हम बहुत सारे असुरों का वध का चर्चा किए। सबसे पहला हमने पूतना के बारे में चर्चा किया। पूतना सूचित करती है मिथ्या गुरु, और जो इस मिथ्या गुरु का वध करना चाहते हैं, मिथ्या गुरु को स्वीकार करने को वध करना चाहते हैं, तो कृष्ण का शरण ग्रहण करना चाहिए। पूतना की किस प्रकार कृष्ण ने वध किया उस लीला को श्रवण करते हुए तो कृष्ण हमको सहायता करेंगे। हमारी मन जो एक मिथ्या गुरु के रूप में सामने प्रस्तुत करता है, और जितने बहुत सारे प्रकार के मिथ्या गुरु तथागत मिथ्या गुरु है, तो उनसे भी उनको पहचान के उनसे दूर रहने का हमको भी शक्ति प्राप्त होता है। पूतना मिथ्या गुरु को सूचित करती है। उसके बाद हमने और एक असुर का चर्चा किया जिनका नाम है शकटासुर। ये शकटासुर जो है वो पुराने जो गंदी आदतें हैं उनको सूचित करता है। जो भार उठा के चलने की जो आदत है, वैसे तो भक्ति के लिए आवश्यक नहीं है, लेकिन फिर भी भार उठाते हुए हम चलते हैं, तो ये जो असुर है शकटासुर, उसको भी ये शकटासुर का वध का लीला का स्मरण करते हुए श्रवण करते हुए कृष्ण की शरणागत होते हुए कृष्ण की सहायता से हम ये असुर को भी हम वध कर सकते हैं हमारे हृदय में। और एक प्रकार का असुर जो अनर्थ के रूप में हमारे ऊपर हमारे हृदय में बैठे हैं वो है तृणावर्ता। यह है बहुत विद्वत्ता के द्वारा उत्पन्न हुआ जो अहंकार है उसको सूचित करता है। तो विद्वत्ता के द्वारा उत्पन्न हुआ अहंकार जो है हमको शुरुआत में ऊपर ऊपर तक लेके जाता है। ऐसा व्यक्ति ऐसा लग सकता है कि मैं प्रगति कर रहा हूं, लेकिन अस्तित्व में ये जो जितना ऊपर जाता है व्यक्ति उतना ऊपर से नीचे गिर जाता है। यह अहंकार जो है विद्वत्ता से उत्पन्न हुआ अहंकार को सूचित करता है तृणावर्त। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने अभी और एक असुर तो नहीं है बल्कि वो उनको वध तो नहीं किए लेकिन उनको उद्धार किए, वह नलकुए और मणिग्रीव। तो उन दोनों को भगवान ने उद्धार किया। ये दोनों सूचित करते हैं अहंकार किसके द्वारा उत्पन्न हुआ, ऐश्वर्य के द्वारा उत्पन्न अहंकार को सूचित करते हैं। प्राइड बिकॉज ऑफ हैविंग लॉट ऑफ ऑपुलेंस मनी। तो ये कृष्ण की सहायता से इससे हम मुक्त हो सकते हैं। और भक्त को बहुत सावधान होना चाहिए, अगर कोई व्यक्ति बहुत ऐश्वर्यवान धनी है, साधुओं के प्रति नम्र भावना बना के रखने से उनका उद्धार हो सकता है। और बाद में हमने एक और एक असुर का वध का चर्चा किया, वह वत्सासुर। वत्सासुर गुरु का पूर्ण तरीके से शरण ग्रहण करने से और गुरु को पूर्ण तरीके से स्वेच्छा प्रदान करने से हमारे अंदर वत्सासुर की भावना को हम निकाल सकते हैं। वो है बचपना, जो बचपना की वजह से हम बहुत सारे नटखट कार्य करते हैं, जो भक्ति के लिए भक्ति की प्रगति में हमको बहुत रुकावट पहुंचाता है। तो ये है वत्सासुर। तो अभी हम और दो असुरों का वध का चर्चा करेंगे जो बहुत महत्वपूर्ण असुर है। एक है बकासुर, दूसरा है अगासुर। कृष्ण की बाल लीलाओं में बहुत सारे असुर आते थे, वैसे केवल कुछ ही असुरों का वर्णन भागवत में हुआ है। ऐसे अनगिनत असुर हर रोज आते थे। तो आचार्य कहते हैं कि असुर लोग क्यों आते थे, कृष्ण को तो मारने के उद्देश्य तो आते थे, लेकिन कृष्ण बाल लीलाओं में अपनी सखाओं के साथ इतने लीलाओं में इतने मग्न थे, खेलकूद में इतने मग्न थे कि उनको ये ख्याल नहीं रहता था कि हमको ब्रेकफास्ट देना है, हमको लंच देना है उनको। तो इसलिए ये इनकी लीला शक्ति, कृष्ण का लीला शक्ति वात्सल्य से पूर्ण होके इस प्रकार की असुरों को ऐसी टाइम में भेजती है जब उनको ब्रेकफास्ट का टाइम होता है या लंच का टाइम होता है। जब जाके उनको ऐसे असुरों को वध करने के बाद उनको ऐसा रहता था कि हम थक गए, थोड़ा सा खाना है, नहीं तो खेल कूद में इतने रमते थे कि उनको पता ही नहीं लगता था कौन सा कब कौन सा टाइम में क्या हो गया। तो ये बकासुर का भी ऐसे ही टाइम आया। तो कृष्ण एक दिन अपनी ग्वाल बालों के साथ वो सब निकल पड़े और बहुत सारे खेल कूद में रमते थे उधर। और जंगल में एक बड़ा सा आसुर दिखाई पड़ा, तो वो लोग बहुत थक गए थे खेल कूद करके। वो पानी पीने के लिए जब गए तो उधर उन्होंने देखा एक पहाड़ जैसा बड़ा सा एक जानवर है, पक्षी। तो और गौर से देखा एक बड़ा सा इतना बड़ा पक्षी है, वो ऐसा लग रहा था कि पक्षी जो ध्यान कर रहा है। लेकिन जैसे कृष्ण और जितने ग्वाल बाल नजदीक गए, तुरंत तो पक्षी ने इतना बड़ा उनका चोंच लेके क्या किया, वो ये जो पक्षी ने कृष्ण को अपने अंदर ले लिया। जैसे कृष्ण को अपने अंदर ले लिया तो उधर बलराम और जितने ग्वाल बाल थे सब लोग बेहोश हो गए। तो इधर कहा जाता है कि बलराम तो इतने शक्तिशाली है, सारे बल का स्रोत है, तो वो तो बकासुर को वध करके वो कृष्ण को बाहर निकाल सकते थे। लेकिन बलराम, हमको मालूम है कि भगवान को पांचों रसों में सेवा करते हैं। पांचों रसों में सेवा करना मतलब शांत, दास, साख, वात्सल, माधुरी, पांचों रसों में बलराम जी कृष्ण को सेवा करते हैं। तो बलराम जी अभी इधर कृष्ण की वात्सल्य से इतना पूर्ण थे कि उन्होंने देखा कृष्ण को इधर बकासुर ने कर लिया, तो इनके अंदर वात्सल्य की भावना आया। तो वो वात्सल्य से प्रेरित होके वो कृष्ण ये सहन उनको सहन नहीं हो पाएगा, कृष्ण जो है अभी वो मरने वाले हैं। तो वो ये सोचते हैं बलराम भी बेहोश हो गए। तो बाद में कैसे भी करके जब जितने भी देवता लोग थे वो भी जय जय करने लगे और वो भी चिंतित होने लगे। कुछ समय के बाद ये बेहोश होकर फिर से वापस उठे। तो उस समय कृष्ण बकासुर के चोंच में वो अपना शरीर इतना हार्ड कर लिए थे, इतना कड़क कर लिए थे, और साथ साथ में वो कृष्ण के शरीर से इतना तेज प्रकाशित हो रहा था, उससे अंदर से इतना जलन प्रकाशित हो रहा था, बकासुर को सहा नहीं गया। वैसे तो कृष्ण का जो शरीर है बहुत कोमल होता है, लेकिन वही कोमल शरीर जब असुरों के शरीर में जाता है असुरों के लिए बहुत भारी पड़ता है। इसे हम आगे भी चर्चा करेंगे कालिया नाग के बारे में। ये भगवान कृष्ण का जो चरण कमल है बहुत कोमल होता है, वैसा नहीं कि भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन को धारण करते हैं तो इतना बड़ा पर्वत को उठाया तो इनका जो बॉडी है एकदम मस्कुलर बॉडी हो जाता है। कृष्ण का मस्कुलर बॉडी नहीं है, उनका बहुत सॉफ्ट बॉडी है भगवान कृष्ण का। कहीं भी स्पर्श करो एकदम ऐसा लगता है कि स्पंज को या बटर को स्पर्श कर रहे हो, तो ऐसा उनका शरीर है। तो आजकल सोचते हैं कि जब तक मैं मसल बनी बनाऊंगा और हार्ड बनाऊंगा तब तक शक्ति नहीं रहता है, लेकिन कृष्ण का ऐसा नहीं था। ही वॉज वेरी सॉफ्ट बॉडी, कोमल अंग, भगवान का एक नाम है जिनका नाम है कोमल, उनका अंग जो है बहुत कोमल है। लेकिन वही जब असुरों के सामने यही जो शरीर है ये बहुत कड़क हो जाता है। तो इसलिए कितना भी वो कृष्ण के शरीर को चबाने के लिए प्रयास किया ये असुर बकासुर, वो कुछ उनको फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उनको कर नहीं पा रहे थे, क्योंकि श्री कृष्ण का जो शरीर बहुत कड़क हो गया था और उनके शरीर से इतना तेज प्रकट हो रहा था कि इसकी वजह से बकासुर सह नहीं पाए कृष्ण को अपने अंदर, इसलिए उनको चोट से उन्होंने कृष्ण को बाहर फेंक दिया। जैसे कृष्ण बाहर आए सभी लोग एकदम उनको राह मिला, तो उन्होंने क्या किया कृष्ण ने, और एक बार बकासुर जो है कृष्ण को चोंच से चोपने के लिए प्रयास किया, तब कृष्ण ने दोनों चोंच को पकड़ा और एकदम ऐसा फाड़ दिया जिस प्रकार एक बालक जो है घास का तिनका को ऐसा फाड़ता है, ऐसा फाड़ दिया। तब जैसे ये कार्य हुआ तो सभी देवी देवता है, सभी लोग कृष्ण को जय 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 करने लगे और आकाश से देवता लोग फूल बरसाने लगे। तो इस प्रकार कृष्ण इतनी बाल लीलाओं को संपन्न कर रहे थे। तो ये बकासुर ये कौन है? बकासुर को तो हम मालूम है कि वो अगासुर और बकासुर ये और पूतना, ये तीनों भाई बहन है। अगासुर का भाई है ये और बकासुर, और उन्हीं का सिस्टर है पूतना, ये तीनों एक ही माता पिता के बच्चे हैं। तो ये जो बकासुर है एक सुहोत्र करके एक गंधर्व था और ये दुर्वास मुनि के पुत्र थे। और दुर्वास मुनि के पुत्र होने के नाते एक दिन ऐसा हुआ, वो चित्ररथा चित्र सरोवर, ये सरोवर में जाके कुछ फूल तोड़ने लगे, कमल पुष्प तोड़ने लगे समर्पण, तो तुरंत शिव जी को बहुत गुस्सा आया। तस्वीर में ये कृष्ण को ही समर्पित करना चाहते थे ये फूल, लेकिन शिवजी ने पार्वती को एक वचन दिए थे कि ये सरोवर से कोई फूल नहीं तोड़ेगा, क्योंकि पार्वती ने ऐसा 100 दिन का व्रत लिया था कि रोज वो 1000 फूल 1000 कमल के फूल कृष्ण को अर्पण करेंगे यही सरोवर से। तो केवल उधर उस सरोवर में केवल 1 लाख फूल ही थे, तो 1 लाख में से अगर एक भी तोड़ा जाए तो पार्वती का व्रत पूर्ण नहीं होता। तो इसलिए ऐसा हो गया कि ये जो गंधर्व है सुहोत्रा करके गंधर्व है वो फूल तोड़ दिए थे, उनको मालूम नहीं था। तो शिव जी को बहुत गुस्सा आया, गुस्सा के उन्होंने क्या किया, तो उनको शाप दे दिया, तुम सरोवर का ही एक प्राणी बन जाओ करके उन्होंने एक पक्षी का रूप धारण दे दिया। इसको बका को इंग्लिश में क्रेन बोलते हैं, हिंदी में बकुला बोलते हैं, बोकला समथिंग। तो उनको उधर का प्राणी बना दिया, शाप दे दिया। लेकिन बाद में उन्होंने कहा कृष्ण तुमको मार के तुमको मुक्त करेंगे करके उन्होंने वचन भी दिया था। ये जो बकासुर है ये किसको सूचित करता है, किस प्रकार के अनर्थ को सूचित करता है? बकासुर हमारे अंदर जो कूट नाती है उसको सूचित करता है, और हिपोक्रेसी ये कूट नाती ही है। हिपोक्रेसी मतलब चपल भाव, द्वंद्व भाव को सूचित करता है। तो ये जो हिपोक्रेसी है, ये जो कूट नाती है, ये बहुत गहरा असुर है, असुर अनर्थ है व्यक्ति के हृदय में। जब तक इस प्रकार का कूट नाती, ये जो डिप्लोमेसी पॉलिटिकल भावना जब तक रहता है, वो भक्ति में प्रगति कभी नहीं कर सकता है, वेरी डिफिकल्ट टू परफॉर्म, क्योंकि हमेशा वो व्यक्ति सोचता है कि बाहर से एक तरीके से दिखाई पड़ता है, अंदर कुछ और है। जैसे बकुला दूर से देखा जाए ऐसा लगता है कि कितना संत है, सफेद रंग का है, आंख बंद करके ध्यान कर रहा है और एकदम शांत दिखाई पड़ता है, लेकिन मनी मन में क्या सोच रहा है, कब ये मछली आएगा, मैं कब लोग मछली को पकड़ के खा लूं। तो वैसे तो संत जैसे दिखाई पड़ता है बकुला बाहर से, लेकिन अंदर क्या भावना है, मछली को पकड़ के खा लूं। तो वैसे ही ये जो कुछ ये हमारे अंदर जो अनर्थ है, बाहर से तो संत की व्यवहार, संत की जैसा वेशभूषा, संत की जैसा कार्यकलाप हम करते हैं, लेकिन अंदर ही हमारे अंदर क्या भावना रहता है, मैं कब उसको دھوکا دوں, کب اس کو مار دوں, کب اس کو میں ختم کر دوں, کب اس کو میں پریشان کروں, تو اس پرکار کی بھاونا رہتا ہے. تو یہ جو ہے اس سے کرشن کبھی پسند نہیں ہوتے. شری چیتنیہ مہاپربھو اگر ان کی سچ میں ان کی کرپا پراپت کرنا ہے تو بھلے ہی کتنے پرکار کا درگن ہو کوئی وہ سویکار کرنے کے لیے تیار ہے, لیکن شری چیتنیہ مہاپربھو کو بھکتوں میں ایک گن ان کو بہت اتینت پسند تھا, وہ ہے سرلتا, سمپلسٹی. اگر ویکتی بہت سرل ہے تو شری چیتنیہ مہاپربھو کا کرپا پراپت کرنا بہت آسان ہوتا ہے. تو یہ جو گن ہے سرلتا, یہ ہم کو بچوں میں پراپت ہوتا ہے. پچھلی بار کل ہم نے بچپنا کے بارے میں خرابیوں کے بچپنا کے سے اتپن ہوا خرابیوں کے بارے میں ہم نے چرچا کیا, لیکن بچپنا میں یہ ایک ایسی گن ہوتا ہے وہ ہے سرلتا. یہ اچھا گن ہے, تو وہ جیسے تھوڑا ویکتی بڑا ہوتا ہے تھوڑا ان کے اندر یہ ڈپلیسٹی آ جاتا ہے, یہ پولیٹیکل ہو جاتا ہے آدمی, وہ سمجھ نہیں پاتا ہے کیا ہے کون ہے بھائی, مجھے میرا متر ہے دشمن ہے, معلوم نہیں پڑتا ہے ویکتی کو. تو اس پرکار کی جو ہپوکریسی ہے یہ بہت خطرناک ہے. اس لیے جو ویکتی یہ سرلتا نامک گن جن کے اندر رہتا ہے اس کو چیتنیہ مہاپربھو کا کرپا بہت جلدی سے پراپت ہوتا ہے. تو یہ جو ہپوکریسی ہے اس سے کیسے بچے, یہ کیول کرشن ہی ہمارا اندر یہ جو کوٹ ناتی ہے وہ نکال کے وہ کاٹ کے پھینک سکتے ہیں, اور اس کے لیے کرشن تو کریں گے ہی, لیکن ہمارا نجی پریاس کا بھی آوشیکتا ہے. ہاؤ ٹو گیٹ آؤٹ آف دس ڈپلیسٹی, یہ جو کوٹ ناتی ہے اس سے کیسے مکت ہو سکتے ہیں. یہ کوٹ ناتی سے مکت ہونا تو کرشن کا سہارا سے ہی ہو سکتے ہیں. اور یہ جو کوٹ ناتی ہے ویکتی کیوں کرتا ہے, وہ اس لیے کرتا ہے باہر کچھ دکھانے کے لیے میں بڑا سنت ہوں, میں بہت اچھا ویکتی ہوں, لیکن اندر ہی اندر ان کے پرتی کروڑ بدھی رہتا ہے. تو یہ تبھی نکل سکتا ہے جب ہم یہ جانیں گے کہ ہمارا جیون کا ادیش اصل میں کیا ہے, ہم ادھر کیوں آئے, ہمارا ہم ادھر آئے ہرد کو پوتر کرنے کے لیے. ہرد کا پوترتا تبھی ہرد کے اندر ہم الگ الگ پرکار کی اصروی بھاوناؤں کو بڑھاتے رہیں گے اور باہر ہم دکھاتے رہیں گے, تو ایک نہ ایک دن یہ جو اندر کی جو باتیں ہیں, اندر کی جو بھاونا ہے, دن باہر ایک دم پرکٹ کے باہر آ جائے گا. وہ ہم روک نہیں سکتے, زیادہ دن روک نہیں سکتے. یہ سب باتوں کے اوپر دھیان کرتے ہوئے وی شوڈ سی ہم کیوں آئے ہیں, وائی آر وی ہیئر, بھکتی مار کو کیوں سویکار کیے, کیوں سویکار کیے, ہدے کی پوترتا کو بنا کے رکھنے کے لیے سویکار کیے. تو یہ اگر بات دھیان میں رکھتا ہے بھکت اور بھگوان سے روز پرارتھنا کرتا ہے کہ میرے اندر سرلتا کی بھاونا آئے, تو وہ اس سے بھگوان ہم کو مدد کریں گے. جیسے یہ جو ڈپلیسٹی ہے, یہ جو کوٹ ناتی ہے, یہ پولیٹیکل بھاونا ہے, ڈپلومسی ہے, کوٹ ناتی ہے, یہ پولیٹیشنز کو ہم دیکھتے ہیں. پولیٹیشین لوگ کیا کہتے ہیں کہ سارے سماج کو کہیں گے, جب الیکشن آتا ہے, الیکشن آتے تو بولتے ہیں کہ سارے پرجاؤں کو بولتے ہیں کہ ہم تو آپ کا سیوک ہے. بولنے کے لیے کیا بولے ہیں, ہم تو آپ کا سیوک ہے, لیکن من میں کیا ہے, آپ سب ہم کو ووٹ دیجئے تاکہ ہم آپ کا مالک بن جائیں گے, ہم آپ کو کنٹرول کریں گے. ویسے بولیں گے سیوک, لیکن اندر من میں کیا ہے, ان کو مالک بننے کا, کنٹرولر بننے کا اچھا رہتا ہے. اور دوسرا اس سمے بہت سارے باتیں کہیں گے, ہم آپ کو یہ بنا دیں گے, ہم کو یہ بنا دیں گے, لیکن کوئی بعد میں وہ بناتے نہیں, کرتے نہیں. یعنی سوچتا کچھ اور ہے, بولتا کچھ اور ہے, اور کرتا کچھ اور ہے. تو ویسے ویکتی کبھی بھی بھکتی میں پرگتی نہیں کر سکتا, اور اس ایسے ویکتی کو کوئی ویکتی متر نہیں بن سکتا. ہر ویکتی اس سے دور رہنا چاہتا ہے. تو سچ میں ویکتی بھکتوں کو سنگ میں رہتے ہوئے بھکتی میں پرگتی کرنا چاہتا ہے, یہ جو سرلتا بہت مہتوپورن ہے. نہیں تو یہ جو جس کے پاس یہ کوٹ ناتی کا بدھی ہے, وہ ویسے بھلے ہی وہ اندر ہے, آپ کتنا بھی چھپانے کے لیے پریاس کرو, جو جس کے پاس تھوڑا سوکشم بدھی ہے, کچھ سمے کے بعد وہ ضرور پہچان لے گا, اور اس پرکار کی قلم کو دیکھتے وہ ترنت آپ سے ڈرنے لگے گا, آپ سے دور رہنے کے لیے پریاس کرے گا. تو ہم نے سوئم دیکھا بھی ہے, جو بھکت لوگ اس پرکار کوٹ ناتی کا انرتھ کو لے کے گھومتے رہتے ہیں, وہ ہمیشہ پریشان رہتے ہیں. کس بات کے اوپر پریشان رہتے ہیں, अरे मेरे साथ लोग क्यों नहीं रहते, वाई पीपुल आर नॉट विथ मी, सभी लोग उनके साथ क्यों रहते, सभी लोग मेरा संग क्यों नहीं चाहते, क्यों नहीं चाहते, क्योंकि वो लोगों ने आपके हृदय में देख लिया है कि कुड़नादी है, तो इसलिए आपसे डरते हैं। तो जो व्यक्ति जो भक्त सोचता है कि मेरी उपस्थिति से सब लोग डरे, तो उसके वजह से बाहर कुछ दिखावा है अंदर कुछ और है, तो इस प्रकार के भक्तों को भक्तों का संग प्राप्त नहीं होता है, वेरी डिफिकल्ट, हमेशा जीवन में बहुत परेशान रहेंगे, क्योंकि भक्तों का संग प्राप्त नहीं होंगे, भक्ति का भक्ति तो प्राप्त होगा नहीं, अगर भक्ति प्राप्त नहीं होगा तो व्यक्ति बहुत दुखी रहता है। तो ये कुटनाती से मुक्त होकर सरलता की भावना को स्वीकार करना बहुत बहुत आवश्यकता है। इफ यू आर वेरी सिंपल, ये शिशिरा जैसे हम देखते हैं कि बच्चे लोग भले उनके पास बहुत सारे दुर्गुण भी क्यों ना हो, सभी लोग बच्चों के प्रति आकर्षित होते हैं, सब लोग बच्चों को चाहते हैं कि साथ में रहें, क्यों क्यों उनके अंदर सरलता की भावना है, तो सोचता है कि ये इसके द्वारा मुझे हानि नहीं पहुंचेगा। अगर कोई व्यक्ति सोचता है कि इसके द्वारा मुझे कुछ हानि पहुंचने वाला है, तो स्वाभाविक तरीके से ये व्यक्ति जो है दूर रहना चाहता है। तो ये जो कूटनाती है, डिप्लोमेसी है, उससे दूर रहना बहुत आवश्यक है। लेकिन यही जो कूटनाती है, डिप्लोमेसी है, ऐसा कुछ एक पदवी पे रहने वाले भक्त या पदवी पे जो रहते हैं, उनको कुछ कृष्ण की सेवा के लिए अपनाने की आवश्यकता पड़ता है। तो चैतन्य चरितामृत में एक प्रसंग आता है, आपको सबको उससे परिचित हो, वो प्रसंग है प्रतापरुद्र। राजा प्रतापरुद्र वो बार बार चाहते थे कि श्री चैतन्य महाप्रभु से मिलने का, वो पत्र लिखते थे और भक्तों से निवेदन करते थे, कितनी बार भी जितने भक्त सारम भट्टाचार्य तक ताकि चैतन्य महाप्रभु से निवेदन किए आप प्रतापरुद्र से मिलिए, तो चैतन्य महाप्रभु बोले नहीं मैं नहीं मिल सकता हूं, वो कितना भी कुछ भी भक्त क्यों ना हो, उसके पास ये राजा का पदवी है, राजा का पदवी होने के नाते लोग मुझे क्या कहेंगे, ये पाउंड शेलिंग मैन, तो मैं अगर उनसे संग करूंगा तो लोग मुझे निंदा करेंगे, मैं सन्यासी होने के नाते जो धन और स्त्री के प्रति संग में रहता है उनको मैं मिलना नहीं चाहता हूं। लेकिन बाद में प्रताप रुद्र ने एक चिट्ठी लिखा कि कहते हुए कि अगर श्री चैतन्य महाप्रभु मुझे कृपा नहीं देंगे मैं एक भिखारी बन जाऊंगा, मैं कान में कुंडल धारण करके भीख मांग में चला जाऊंगा, मेरे राज्य की क्या जरूरत है, चैतन्य महाप्रभु का संघ नहीं मिल रहा है, वो उनको संग प्राप्त उनके उनके चैतन्य महाप्रभु और मेरे बीच में ये राजत्व है, तो ये राजत्व रुकावट पहुंचा रहा है, तो राजत्व के क्या फायदा, तो मैं उसको त्याग करके भिखारी बनने के लिए तैयार हूं। तो सब भक्त लोग जाके उनको निवेदन कर रहे थे, चैतन्य महाप्रभु उनको इतना तक किए ठीक है तो मैं अपना वस्त्र दूंगा, तो उन्होंने वस्त्र भेजा, तो तुरंत प्रतापरुद्र जो है उनका वस्त्र का पूजा करने लगे। लेकिन फिर भी बाद में भी उनको इच्छा था कि फिर से चैतन्य महाप्रभु से मिलने का, तब चैतन्य महाप्रभु ने कहा ठीक है, राजा का प्रतिनिधि उनका पुत्र होता है, पिता का प्रतिनिधि होता है, पुत्र पिता में पुत्र में ज्यादा अंतर नहीं रहता, तो उनका पुत्र से मिलने के लिए तैयार हूं। तो प्रतापरुद्र के पुत्र आए थे चैतन्य महाप्रभु के पास, चैतन्य महाप्रभु ने जैसे उस पुत्र को देख उनको उनके पुत्र को देखे तो तुरंत उनके अंदर कृष्ण का स्मरण हुआ, क्योंकि उनका पुत्र जो रंग था बहुत काला था और उनके आंख बहुत सुंदर थे, कमल जैसे आंख थे। तो जैसे चैतन्य महाप्रभु ने उस पुत्र का आलिंगन किया, प्रताप के पुत्र के अंदर भी बहुत सारे भाव आवेश उत्पन्न हुए, कृष्ण का प्रेम उत्पन्न हो गया। जब वो कृष्ण प्रताप रुद्र के पुत्र जो है उनके अंदर कृष्ण का प्रेम उत्पन्न हुआ, जब वो गए वापस, जब प्रताप रुद्र ने उनको स्पर्श किया तो प्रताप रुद्र को कृष्ण प्रेम का अनुभूति हुआ। तो इस प्रकार, लेकिन प्रताप रुद्र जो है चैतन्य महाप्रभु का भेंट नहीं हो पा रहा था, तब प्रताप रुद्र ने सोचा हाँ एक आइडिया है। तो उसी समय जब चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण भारत की ओर गए थे, उस समय रामानंद राय तो उनको कहे थे कि आप कुछ समय के बाद अपना जो जिम्मेदारी है वो त्याग करके आप मेरे पास आ जाइए, तो जगन्नाथपुरी में। तो उसी समय रामानंद राय ने अपना इस्तीफा दिया प्रताप रुद्र को, क्योंकि प्रताप रुद्र के अंडर में वो देखभाल कर रहे थे दक्षिण भारत की प्रांतों को। तब प्रताप रुद्र ने सोचा हाँ अभी रामानंद राय है, ये भगवान के चैतन्य महाप्रभु का अच्छे भक्ति नहीं है बल्कि वो बहुत चतुर है, बहुत एक्सपर्ट भी है, क्योंकि वो तो राज चलाते हैं, वो तो डिप्लोमेसी में एक्सपर्ट है। तब प्रताप रुद्र ने कहा रामानंद राय से, अगर आप मुझे चैतन्य महाप्रभु से भेंट कराएंगे आपको तुरंत छुट्टी दे दूंगा, और साथ साथ में आपका जो थंका मिल रहा है वो तो मिलता ही रहेगा, मुझे बस चैतन्य महाप्रभु से भेंट करा दीजिए। तो रामानंद ने कहा ठीक है मैं प्रयास करता हूं। तब रामानंद राय उनको छुट्टी मिल गया तो जगन्नाथपुरी आ गए, वो तो वैसे थे मद्रास में, और राजमंड्री में उनको मुलाकात हुआ था रामानंद राय का, क्योंकि रामानंद राय उस समय और गोदावरी के पुष्कर को देखने के लिए आए थे। असल में रामानंद राय उसके निवासी नहीं है, राजमंड्री के निवासी नहीं है, वो मद्रास प्रोविंस को देखभाल करते थे, क्योंकि प्रताप रुद्र मद्रास को भी जीत किए थे, मद्रास को भी देखभाल करते, पूरा दक्षिण भारत को भी देखभाल करते, कुछ भागों को, पूरा आंध्रा और कुछ भाग, कुछ तमिलनाडु के कुछ भागों को भी उनके वो उसके राजा थे। तो रामानंद राय उनके तरफ से, प्रताप रुद्र की तरफ से वो देखभाल करते थे। तो रामानंद राय आए जगन्नाथपुरी, आके चैतन्य महाप्रभु के पास जाके मिलते हैं, मेरा जो मन है वो है रथ के बराबर हो गया, और जिस प्रकार एक एक व्यक्ति का रथ भागता है उसी प्रकार मैं भागते भागते आपके पास आया हूँ, आपका मेरा मन आपके प्रति आकृष्ट हो गया है। तो तब श्री चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय के बीच में संवाद होता है, तो करते करते कृष्ण कथा करते करते बीच में रामानंद राय कहना शुरू करते, मैंने सुना इधर का जो राजा है प्रताप रुद्र वो आपका बहुत अच्छा भक्त है, तो ऐसे प्रताप रुद्र का गुणगान करने लगे। तो चैतन्य महाप्रभु देखते रामानंद राय को, रामानंद राय तुम्हारे मन में कुछ और है, तुम बोलते कुछ और हो ये क्या है रहस्य तुम बताओ तो इस प्रकार की बातें शोभा नहीं देता तुमको, इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु बोलने लगे। तब उस जगह परपोट में श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, क्योंकि रामानंद राय वो एक राजा के रूप में बहुत सारे सेवा किए, राजा के रूप में वो एक बड़ा राज्य को संभालने की सेवा किए, तो ही वॉज वेरी एक्सपर्ट इन पॉलिटिक्स, तो वो एक कूटनाति में बहुत एक्सपर्ट थे। तो अभी वो क्या कर रहे, उनकी जो कुशलता है कूटनाति में, वो कूटनाति का कुशलता को लेके वो क्या कर रहे अभी, एक प्रताप रुद्र और चैतन्य महाप्रभु को भेंट कराने के लिए प्रयास करा रहे, चैतन्य महाप्रभु का भेंट कराने के लिए प्रयास कर रहे, यानी एक भक्त को कृष्ण के और नजदीक भेजने के लिए ये कूटनादि का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन उसका योग्यता भी होना चाहिए। एक छोटा सा घटना हम बताते हैं, ये प्रभुपाद जी के समय हुआ था। तो एक बार प्रभुपाद जी गए थे उधर, ओके विदेश का एक सेंटर था, कहीं मेरे ख्याल से जर्मनी का सेंटर था लगता है कहीं, तो उधर का उस सेंटर का जो अध्यक्ष है वो बिलोंग करते थे, वो कैथोलिक था, कैथोलिक उनके बाद में भक्त बने, सोला माला जब करते दीक्षित भक्त हो गए, बट वो कैथोलिक क्रिश्चियन थे। लेकिन उधर का जितना भी कांग्रीगेशन था वो सब कौन थे, जूस थे, जूश, और ये बरसों का झगड़ा है इन दोनों के बीच में, ये दोनों कम्युनिटीज के बीच में, ये कभी दोनों साथ में कभी मिलते जुलते नहीं, लेकिन जो भक्त बन जाते हैं फिर वापस तो पुराने अपने ख्यालात को भी लेके आते हैं। तो प्रेसिडेंट तो कैथोलिक है और ये कांग्रीगेशन जूत है, तो दोनों के मध्य कभी जमता नहीं था। एक बार प्रभुपाद जी गए, जब प्रभुपाद जी गए तो ये जो कैथोलिक जो प्रेसिडेंट है वो प्रभुपाद जी के पास जाके कहने लगे, प्रभुपाद यू नो दिस पीपल ज्यूइश पीपल दे ट्रबल अ लॉट, कुछ करते नहीं है, उनको सहयोग नहीं देते, वो ये बहुत कंप्लेंट, लंबा छोड़ा कंप्लेंट दिया। तो प्रभुपाद जी ने इनको कहा, दिस ज्यूइश पीपल दे आर यूजलेस, तो उनको बहुत अच्छा लगा तो अभी प्रेसिडेंट वापस गए तो जाके अभी सब कांग्रीगेशन थे उनको जाके बोलने लगे प्रेसिडेंट कि देखो यू आर ऑल यूजलेस पीपल, इवन प्रभुपाद टोल्ड दिस, प्रभुपाद जी ने कहा कि आप नालायक हो, बेकार लोग हो। तब उनको बहुत गुस्सा आया कि जितने भी कांग्रेसन थे सब लोग आए प्रभुपाद जी के पास आके बैठे, तो रूम में प्रभुपाद जी अपना काम कर रहे थे, एक एक करके आए, एक एक कोने में खड़ा है, एक उधर खड़ा है, वो खड़ा है, सब लोग एक व्यक्ति प्रणाम करके ऐसे देख रहे, सब लोग प्रभुपाद जी को देख रहे। तो बहुत समय हुआ प्रभुपाद जी ऐसे कर रहे थे, अपना काम कर रहे थे, तो एक जो वक्त वो हिम्मत उठा के, प्रभुपाद आई हर्ड दैट यू टोल्ड दैट वी आर ऑल यूजलेस, प्रभुपाद जी हमने सुना कि आपने कहा कि हम सब बेकार लोग हैं। तो प्रभुपाद जी ने कहा, उनको उठा के देखा, आई टोल्ड दैट यू आर ऑल यूजलेस, आई नेवर टोल्ड इट, मैं तो कभी कहा नहीं ऐसा। तो सब लोग बोले जय प्रभुपाद, कैन नेवर से दिस, इज ए प्योर डिवोटी, तो वो लोग बोल रहे जय प्रभुपाद जी ऐसे कभी कही नहीं सकते क्योंकि वो शुद्ध भक्त है करके वो सब चले गए। जाके वो प्रेसिडेंट के ऊपर हावी हो गए, बोले कि प्रभुपाद जी ने ऐसा कभी नहीं कहा, हम गए थे प्रभुपाद जी के पास, उन्होंने कहा ऐसा कभी कहा नहीं, तुम असलियत में हम दोनों को झगड़ा लगाना चाहते हो, तुम पॉलिटिशियन हो, ये वो सब उनको निंदा करने लगे। तो वो बेचारा प्रेसिडेंट जो है वो भागते हुए प्रभुपाद जी के पास आया। वो आगे बताए, प्रभुपाद डिड यू टेल देम दैट यू नेवर टोल्ड दैट दे आर यूजलेस, आपने उनको ऐसा कहा कि आपने कभी ऐसा कहा नहीं कि वो लोग लायक है? तो प्रभुपाद ने कहा हाँ। तो वो तो घबरा, प्रभुपाद जी बट यू टोल्ड, आपने तो कहा था। तो प्रभुपाद जी ने उनको कहा कि आई टोल्ड यू दैट दे आर यूजलेस बट आई डिड नॉट टेल यू टू टेल देम दैट दे आर यूजलेस। मैंने कहा था कि वो बेकार लोग हैं, लेकिन मैंने ये नहीं कहा था कि तुम जाके उनको कहो कि वो लोग बेकार है। समझा है? तो प्रभुपाद टोल्ड दैट आई टोल्ड दैट दे आर यूजलेस बट आई डिड नॉट टेल यू टू टेल देम दैट दे आर यूजलेस। तो ये तुम्हारे तक हो। तो इस प्रकार कभी कभी ये करना पड़ता है, लेकिन ये हमेशा भक्तों के बीच में झगड़ा उत्पन्न कराने के लिए और कंट्रोल प्राप्त करने के लिए, सत्ता को बना के रखने के लिए और कृष्ण से दूर भक्तों को लेके जाने के लिए, ताकि मेरा कुछ फायदा हो और मैं अच्छा भक्त के रूप में प्रणीत हूं। तो ये जो चीजें है, ये कुटनाती बोला जाता है, ये हमारी भक्ति में नाश कराता है और कृष्ण इसको कभी सहन नहीं करेंगे। और एक न एक दिन ऐसा हालत होगा व्यक्ति का कि उनका कोई मित्र नहीं रहेगा, उनका साथ में कोई नहीं रहने के लिए पसंद करेगा। तो लेकिन वही थोड़ा चतुराई से और कृष्ण की सेवा के लिए, जैसे रामानंद राय ने किया था, प्रभुपाद जी इस घटना में किए थे, वो व्यक्ति जरूर कर सकता है। ये बात हमको मालूम पड़ता है ये बकासुर का कहानी से। तो इसलिए पूतना को भी बकीयम बोला गया है, बकासुर को बहन के रूप में, हो बकीयम सनकाल पूतम, ये बकासुर के आधार में थोड़ा सा घटना है। तो अभी कृष्ण धीरे धीरे से 5 साल के हो गए और एक दिन था बलराम जयंती का दिन था। बलराम जयंती के दिन रोहिणी माता ने बलराम जी को बोला कि आज तुम नहीं जा सकती हो कृष्ण के साथ। क्यों? क्योंकि तुमको नहलाना है, तुमको लंबा समय का उनको डेकोरेशन वगैरह करना है, तो इसलिए उस दिन बलराम जी कृष्ण के साथ नहीं गए। और उस दिन कृष्ण ने क्या किया, थोड़ा जल्दी जाने के लिए प्रयास किया, सारे जितने भी ग्वाल बाल उनको जल्दी उठा दिए, उन्होंने वो ब्यूगल बजा दिया, जल्दी सुबह उठा के बोला कि आप, हम लोग ब्रेकफास्ट लेके नहीं जाएंगे, इधर ब्रेकफास्ट कैरियर में भर के जाएंगे और जंगल में हम खाएंगे। ये करके कृष्ण जो है वो सारे बाल ग्वाल बालों के साथ, उनकी बछड़ों के साथ गए। तो उधर भागवतम में लिखा है कि उनकी जो कृष्ण की जो केवल कृष्ण की जो बछड़े हैं वो असंख्य हैं। और टीका में आचार्य लिखते हैं, असंख्य का मतलब है एक के बाद अगर आप 17 जीरो लगाएंगे, 17 शून्य लगाएंगे, 17 जीरोज आफ्टर 1 जो संख्या होती है उसको असंख्य बोला जाता है। असंख्य मतलब अनलिमिटेड है, लेकिन उसका एक वैदिक मैथमेटिक्स की गणना के अनुसार 1 followed by 17 zeros, ये पता नहीं उसको इंग्लिश में कैसे मैथमेटिक्स में उसका क्या नंबर होगा, बिलियन ट्रिलियन क्या जो भी है, व्हाट एवर इट इज, लेकिन असंख्य मतलब। तो कृष्ण के पास इतने बछड़े थे केवल कृष्ण का, और बाकी लोगों का क्या कहना, और भी बच्चों को जोड़ा जाए, इतने सारे बछड़े थे। तब ऐसा मान सकते हैं कि ये छोटा सा, ये जो 84 कोस ब्रज में, वो भी क्यों वृंदावन की बात चल रहा है, इधर उधर इतने सारे बछड़े कैसे हो सकते हैं, बछड़े इतनी संख्या हो तो गाय कितने होंगे और बैल कितने होंगे, ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि कृष्ण अनंत है और कृष्ण का धाम भी अनंत है। तो अनंत होने के नाते वैसे हमको लग सकता है 84 कोस का है, इधर से इधर 32 मील का है, जो भी है, अनंत होने के नाते अनंत गायें बछड़े रह सकते हैं। अस्तित्व में ये जितने भी अनंत कोटि ब्रह्मांड है वो आध्यात्मिक जगत का एक कोने में पड़ा हुआ है। और जैसे हम सनातन गोस्वामी शिक्षा में बात को चर्चा करने वाले हैं, किस प्रकार ये आध्यात्मिक जगत के एक कोने में पड़ा हुआ है इस अनंत कोटि ब्रह्मांड, एक ब्रह्मांड ही अस्तित्व उसका आर पार हमको मालूम नहीं पड़ता, तो वैसे अनंत कोटि ब्रह्मांड है वो सब आध्यात्मिक जगत का एक कोने में पड़ा हुआ है। और ये जो जितने भी आध्यात्मिक जगत है वैकुंठ लोकों से बना हुआ है, ये सारे जितने वैकुंठ लोक हैं और ये एक वैकुंठ लोक ये भौतिक जगत से हजारों लाखों गुना बड़ा है। ये हजारों लाखों वैकुंठ लोक वृंदावन का एक कोने में पड़ा हुआ है। अगर वैसा है तो इतने अरबों गायों की संख्या और बछड़ों की संख्या वृंदावन में कृष्ण को पालने में कोई लंबा समय ज्यादा समय नहीं लगता। तो ये सब बछड़ों ग्वाल बालों के साथ गए। जब कृष्ण हमेशा उनके साथ बहुत सुंदर सुंदर ये लीलाएं करते थे। कोई कोयल का आवाज निकालता था, कोई मेंढक जैसा कूदता था, कोई खेल कूद करते थे, और कभी कभी कृष्ण जो है वो अकेले अकेले वो ये जंगल की सुंदरता को देखने के लिए कहीं और जाके जंगल की सुंदरता को देखने के लिए जाते थे। तब ग्वाल बाल तुरंत देखते थे कृष्ण कहाँ गया और देखे कि वहां कृष्ण उधर है। सब लोग कंपटीशन लगाते कि सबसे पहला मैं जाके कृष्ण को स्पर्श करूंगा। इसलिए भागते भागते जा रहे थे, कृष्ण को सबसे पहला स्पर्श करते थे। तो ये इस प्रकार की बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं चलती थी। तो उसी लीलाओं के समय में अभी लीला शक्ति ने सोची, इतना लीलाएं कर रहे, इतना खेलकूद कर रहे, अभी उनका ब्रेकफास्ट भी लेके नहीं आए घर में, अभी उनका ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, अभी अघासुर के अंदर प्रेरणा दिया। अघासुर करके बड़ा असुर था, तो उनके यार जाओ जाओ अभी तुम भी मरो और साथ साथ उनको कम से कम खिलाओ करके वो, तो अघासुर जो है बड़ा सा एक सांप के रूप में आया। तो ये अघासुर के बारे में कहा जाता है कि वो शंखासुर के पुत्र है, और ये उनके पास बहुत सुंदर शरीर था। इनके पास इतना सुंदर शरीर था, इनके पास इतना गर्व हो गया था सुंदर शरीर की वजह से। तो वो अगर अष्टावक्र, जो अष्टावक्र ऋषि है, बहुत प्रसिद्ध ऋषि है, जो ओरिजिनल जो मायावाद का दर्शन को उन्होंने स्थापना किया था अष्टावक्र ने, लेकिन बड़े वो तो कृष्ण की योजना से उन्होंने किया था, लेकिन असल में बड़े बड़े ऋषि है, कृष्ण के भक्त भी है। तो अष्टावक्र को देखा उन्होंने, असुर ने देखे, बोला कि क्या शरीर है, देखो कितना गंदा है, ये आठ जगह टेढ़ा मेढ़ा शरीर है। तो हंसने लगे। तो अष्टावक्र को गुस्सा आया, उन्होंने कहा कि तुम्हारा भी एक शरीर जो है सांप के वजह से सांप जैसा हो जाए, सांप का जो शरीर भी टेढ़ा मेढ़ा रहता है, वो सीधा नहीं रहता उनका, तो इस प्रकार तुम्हारा हो जाए करके उन्होंने शाप दिया था। लेकिन फिर भी जब अघासुर ने फिर प्रणाम करके माफी मांगा, तो अष्टावक्र ने कहा कि तुम चिंता मत करो, कृष्ण स्वयं आके तुमको मार के वध करके उद्धार करेंगे। तो अघासुर बड़ा सा मुंह खोल के बैठ गए थे। तो जितने भी ग्वाल बाल थे वो सब देखने लगे, इतना भयंकर सा असुर को देखने लगे। वो लोग सोचने लगे क्या है ये, कि एक दो अघासुर का जल शाम, अघासुर तो सांप के रूप में आए थे, सांप का जो नीचा जा था उनका जो होंठ थे नीचे के, वो जो नीचे के होते, और दूसरा जो ऊपर का होंठ है वो ऐसा लग रहा था कि आकाश में कोई बादल की इतना ऊंचाई तक पहुंच गया था। और उनका जो जिह्वा है वो सांप का जिह्वा, वो बड़ा एक हाईवे के रूप में दिखाई पड़ रहा था, और उनके जिह्वा के बाजू में जो जगह है वो ऐसा दिखाई पड़ रहा था, एक बड़ा बड़ा पहाड़ के जो वैलीज होते उस प्रकार दिखाई पड़ रहा था। उनके दांत जो है ऐसा दिखाई पड़ रहा था, मेरु पर्वत जैसा बड़ा बड़ा पहाड़ के जैसे दिखाई पड़ रहा था। तो ये अघासुर मुंह खोल के बैठा था और सोच रहा था कि मैं अभी कृष्ण को वध करना है, और कृष्ण को वध करना है क्या करना होगा, कृष्ण को वध करूंगा तो कृष्ण के विरह में सारे जितने ग्वाल बाल है वो भी मर जाएंगे, अगर ग्वाल बाल मर जाएंगे उनके माता पिता जितने भी है वो भी मर जाएंगे क्योंकि उनके विरह में, इस प्रकार सारा वृंदावन को मैं नाश कर सकता हूँ, केवल ग्वाल बालों को वध करने से कुछ होगा नहीं, मुझे कृष्ण को मारना होगा। तो इस प्रकार वो सोचने लगे। तो ये सब जितने भी ग्वाल बाल थे, ये ग्वाल बाल बोलने लगा ये बड़ा सांप है, चलो भाई हमको हमको नहीं करना है। कोई बोलने लगा नहीं 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 ये तो केवल डायरामा जैसा है, अभी तुमको मालूम नहीं जंगल में बहुत विचित्र चीजें होता है, ये भी एक विचित्र चीज है, हमको ये खेलने का जगह है। इस प्रकार ग्वाल बालों में एक बहस होने लगा। तो एक ग्वाल बाला के बताया, भले ही वो जीता जागता बड़ा असुर राक्षस भी क्यों ना हो, सांप भी क्यों ना हो, अभी तो बकासुर को कृष्ण ने वध किया ना, ये अगर ये खतरा ये हमारे लिए खतरा है तो कृष्ण करेंगे, क्यों चिंता करें। तो तब सबको ये आइडिया अच्छा लगा, हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छा आइडिया है, चलो हम चलने हम चलते हैं। तो ये कुछ बाल बाल सोचने लगे नहीं जाना है, लेकिन फिर भी वो जो है दूसरा ग्वाल बाल उनका हाथ पकड़े और एक हाथ दूसरा ऐसे एक दूसरे का हाथ पकड़ते पकड़ते वो निश्चिंत होकर चलने लगे कृष्ण के वो तब कृष्ण दूर से सोचने लगा, ये तो बड़ा असुर है, सब लोग जा रहे हैं, क्या होगा इनका। तो अगासुर देख रहा था कि सारे गाल बाल उनके मुंह के अंदर चले गए, लेकिन उनके मुंह से बहुत सारा पॉइजनस, बहुत गंदा बदबू जैसा आ रहा था, लेकिन फिर भी वो थोड़ा एडवेंचर करने के लिए अंदर गए। तो कृष्ण सोचने लगे ये अगासुर जो इनको मार देंगे। तो अगासुर जो इंतजार कर रहा था, ऐसे तो उसको खा के खत्म कर देता था, लेकिन वो कृष्ण को मारने का उनका उद्देश्य था, इसलिए उन्होंने अभी मुंह बंद नहीं किया था। तो उनको निश्चित रूप में मालूम था कि ये ग्वाल बालों को बचाने के लिए कृष्ण जरूर आएंगे अंदर। तो कृष्ण वो धीरे धीरे से पहुंचे, हाँ, अगासुर के मुंह में वो भी पहुंचे। तो कृष्ण सोचने लगे कि मैं तो असुर को वध कर सकता हूं बाहर से ही, अगर बाहर से ही मैं उसको वध कर दूंगा क्या हो जाएगी, ग्वाल बाल मर जाएंगे, तो मुझे इस असुर को भी वध करना है और साथ साथ में ग्वाल बालों को भी बचाना है, इसलिए मुझे कुछ और तरीका अपनाना पड़ेगा। तो कृष्ण ने क्या किया, वो स्वयं वो असुर के मुंह में गए, मुंह में जाके अभी अपने आप को इतना विस्तार करने, बड़ा शरीर बनाने लगे। तो इधर ऐसा विश्वनाथ जी ठाकुर लिखते हैं अपनी टीका में कि अभी पहले जितने भी असुरों को वध किए कृष्ण ने, उनकी आकृति तो वही था, लेकिन आकृति को बढ़ाया नहीं था। पूतना को कैसे वध किया, वो अपने बालक के स्वरूप में थे, उनको शरीर को लंबा चौड़ा नहीं किया उन्होंने, वैसे उन पूतना को वध किया। जब शकटासुर को वध किया तो उन्होंने अपना पैर को वामन देव जैसा बढ़ाया नहीं, केवल ऐसे धक्का मारा, उसी पैर उतना ही सही इसका पैर था, लेकिन शकटासुर को वध किया क्यों, और साथ साथ में उन्होंने अगासुर को भी इनको भी सॉरी तृणावर्त को वध किया। उस समय भी कृष्ण का आकृति वही था, हमने कहा था कि पूतना की लीला में कृष्ण ने अपनी होंठों की शक्ति प्रकाशित किया, शकटासुर की लीला में कृष्ण ने अपनी चरण कमलों की शक्ति प्रकाशित किया, और तृणावर्त की वध में कृष्ण ने अपनी बाहों की, अपनी हाथों की शक्ति को प्रकाशित किया। और जब उन्होंने नलकुएर मणिगिरी को उद्धार किया, इतना बड़े वृक्षों को उन्होंने गिराया, तब क्या किया कृष्ण अपनी आकृति को तो बढ़ाया नहीं था, लेकिन अभी इन्होंने आकृति को बढ़ाया, इतना बड़े हो गए। अगासुर का जो बुरा मुंह था, ऐसा लग रहा था कि गगन को स्पर्श कर रहा, आकाश को स्पर्श कर रहा है, इतना बड़ा मुंह था। अभी कृष्ण छोटे से है, इतना गए जाने के बाद उन्होंने सोचा मैं कैसे उसको वध करूं, तो कृष्ण ने क्या किया अपने आप को इतना बड़ा सा विस्तार किया। तो उधर आचार्य लिखते हैं कृष्ण ने ऐसा विस्तार क्यों किया, पहले क्यों नहीं किया था, अगर और असुरों को वध करने के समय ऐसा विस्तार क्यों नहीं किया, क्योंकि उस समय कृष्ण के सामने उनके माता पिता थे, नंद महाराज यशोदा थे, और नंद महाराज यशोदा के सामने अगर इतना बड़ा सा हो जाएंगे तो अस्वाभाविक लगेगा, अपना पुत्र जो इतना बड़ा हो गया, ये हो गया, तो माता पिता को अच्छा नहीं लगता। माता पिता हमेशा देखना चाहते हैं कि मेरा पुत्र जो है पुत्र जैसा ही रहे, लेकिन अभी इधर उनके माता पिता उनके सामने नहीं है, उनका भाई भी नहीं है, उनका राम जी भी नहीं है, ये ध्यान में रखना चाहिए। तो उन्होंने सोचा कि मैं अपने मित्रों को कुछ और चीजें दिखाऊं मैं, क्योंकि अगर मित्र लोग देखेंगे तो ये साक्ष्य में इतना परेशानी नहीं होगा, अगर अपना मित्र बड़ा हो जाता है, छोटा हो जाता है, ये तो हंसी मजाक में ले लेंगे, लेकिन माता पिता सह नहीं सकते उनका जो छोटा सा बालक जो इतना बड़ा हो गया, इतना लंबा छोटा हो गया। तो इसलिए क्योंकि उनका केवल साक्ष्य रस के बत्तोले लोग ही थे, इसलिए कृष्ण ने क्या किया, हाँ, उनको अब जो मैं कैसे इतना बड़ा भी हो सकता हूं करके उन्होंने दिखाया, ही शोड आई कैन बिकम बिग ऑल्सो। वैसे तो उनको इतना बड़ा बनने की असुरों को वध करने इतना बड़ा बनने की आवश्यकता नहीं है, अगासुर को ऐसे ही वध कर सकते थे, लेकिन फिर भी उनका ये भी दिखाया कि मैं बड़ा भी हो सकता हूं। इसलिए कृष्ण ने अपने शरीर को इतना विस्तार, इतना बड़ा कर दिया कि अगासुर का जो मुंह है, मुंह जितना बड़ा हो गया कृष्ण, और अगासुर के एकदम जो उनके मुंह का कोने कोने तक उनका शरीर आके स्पर्श कर रहा था, ताकि अगासुर को सांस लेने में तकलीफ हो रहा था, और अगासुर सांस लेने के लिए प्रयास कर रहे थे और तड़प रहे थे, क्योंकि अगर सांस नहीं लगा व्यक्ति बेचारा तड़प जाता है, और तड़पते 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 उनका आत्मा जो है वो शरीर से बाहर निकला। वो कैसे निकला, उनको सर को फोड़ के बाहर निकला, क्योंकि ये प्राणवायु को बाहर निकलने का भी जगह नहीं था, क्योंकि सांप का शरीर में और कोई रंध्र होता ही नहीं है, केवल मुंह ही उनका रंध्र, सब कुछ मुंह से ही होता है। तो मुंह को पूरा कृष्ण ने बंद करके रखा था, तो इससे उनके प्राणवायु को निकलने का कोई जगह ही नहीं, रास्ता ही नहीं था। उसके प्राणवायु जो है उनके सर से निकला, सर से निकल के वो आकाश में ऐसे ऐसे घूम रहा था। तो कृष्ण जैसे अगासुर का वध हो गया तो अपने वापस उसी आकृति में हो गए, और सारे ग्वाल बालों को लेके आए बाहर। जैसे ग्वाल बालों को लेके आए, वही जो अगासुर का आत्मा है घूमते घूमते आके कृष्ण के शरीर में लीन हो गया। तो ये जो है उसकी वजह से ये स्वरूप मुक्ति उनको स्वरूप सावज मुक्ति उनको प्राप्त हुआ गासुर को। तो ये बात जब उन्होंने देखा, सारे जितने भी देवता है जो अगासुर से बहुत परेशान थे, वो सब लोग जय 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 करने लगे। तो ये जय जय आवाज, सारे जितने मृदंग करताल की आवाज सुनाई पड़ रहा था, और ऊपर से बहुत सारे फूलों की वर्षा हो रही थी, ये सब देख के सारे देवता लोग ये कर रहे थे। लेकिन ब्रह्मा जी अपने काम में व्यस्त थे, तो उन्होंने सोचा क्या हो रहा है भाई, जय 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 क्या हो रहा है, भक्त लोग देवता लोगों को क्या हो गया अचानक। वो आके ब्रह्मा जी ये बादलों के पीछे से देवता लोग ये सब एक बड़ा सा उत्सव मना रहे थे अगासुर का वध का, तो उन्होंने देखा कि क्यों उत्सव मना रहे, जाके ब्रह्मा जी जाके देखे कि और क्या हो रहा है। अभी कृष्ण ने बड़ा सासुर अगासुर को वध किया और ये बाल बालों के साथ खेलता कूदता कर रहा है। तो सब लोग सोचने लगे, ब्रह्मा जी सोचने लगे क्या हो क्या रहा है इधर। तब ब्रह्मा जी जो है ये देख के विमोहित हो गए। तो अगला लीला जो है ब्रह्म विमोहन लीला। तो ये जो दो लीलाएं हैं, अगासुर का वध और ब्रह्म विमोहन लीला, ये दो लीलाओं का वर्णन, जैसे ग्वाल बाल हमेशा जो भी कृष्ण असुरों को जिन असुरों को वध करते थे वो लीलाओं को जाके तुरंत घर में जाके बताते थे, अपने माता पिता को बताते थे। इस प्रकार पूरा वृंदावन में कृष्ण लीला से ही पूरा भरा रहता था, पूरा दिन भर कृष्ण लीलाओं का वर्ण, कृष्ण लीला करते थे, जो जो लीलाएं जो जो कार्य करते थे सभी लोग जाके नंद महाराज और जितने भी ग्वाल बाल थे, गोप वृंद थे और गोपियां थे, सब उनको बताते थे, माता पिता को, सभी लोग एक दूसरे से चर्चा करते थे। तो अरे कृष्ण ने ये असुर आया था, इतना वध किया, इसने ये किया। ऐसा नहीं कि केवल यही असुर थे, मैंने पहले भी कहा था कि बहुत बार बार रोज ना दो तीन असुर को वध करते ही थे। तो ये जो लीला है इनका श्रवण करते हुए भागवत में लिखा है, नंद महाराज को ये जो भव सागर का या भव रोग, ये भौतिक जगत का ताप का जरा सा भी उनको अनुभव नहीं हो रहा था। तो नंद महाराज के बहुत दूर के रिश्तेदार आते थे, वो रिश्तेदार आके देखते थे नंद महाराज अभी तो उनका बड़ा हो गया, आप थोड़ा सा वरिष्ठ हो गए, वृद्धावस्था तक आ रहे हो, आप इतना अपने पुत्र में आसक्त क्यों हो, हमेशा अपने पुत्र के बारे में बात करते रहते हो, पत्नी के बारे में बात करते रहते हो, इसके बारे में बात करते रहते हो, अभी आप जो है वैराग्य लो, वैराग्य लेके अभी आप थोड़ा सा नारायण की उपासना करना शुरू कर दो, आप ये सब क्यों कर रहे हो। तो नंद महाराज को ये बातें जरा सी उनको सुनाई पड़ रही थी, क्योंकि वो कृष्ण में इतना आसक्त थे, तो कृष्ण की लीला कथा करने में उनको इतना रमण हो रहा था कि उनको ये भौतिक जगत का जो ताप है, अलग लोगों का कहना है वो करो ये करो, इनको कुछ फर्क नहीं पड़ता था। जैसे भगवान भगवीता में कहते हैं कि यथाते मोदिक मोहकलिनम बुद्धिर विदितरिष्यति तथा ग्रंथासि निर्वेदम श्रोतव्या श्रुतयस्य च, तथा ग्रंथासि निर्वेदम, भले ही वो वेद की बातें क्यों ना हो, जो व्यक्ति यथाते मोहकलिनम बुद्धिर विदितरिष्यति, ये मोह का कलिल से या ये भौतिक जगत के मोह से मुक्त होके कृष्ण में जिस व्यक्ति का आसक्ति हो गया, भले ही वेदों की बातें भी लेके लोग सामने क्यों ना प्रकट हो प्रस्तुत करे, तो उसको ये जरा से भी रुचि नहीं था, वो श्रोतव्य ही बिकम इनडिफरेंट टू ऑल दीज थिंग्स, ही विल बिकम इनडिफरेंट टू द वेद। जैसे कभी कभी ब्रह्मचारी बनने के लिए जो भक्त लोग आते हैं उनके सामने माता पिता क्या करते, कुछ वेदों की बातें लेके आते, बड़े बड़े अच्छे अच्छे बातें लेके, देखो वेदों में भी कहा है, इसमें भी वो पुराण में ऐसा कहा है, वो भक्त ने ऐसा किया है। जैसे हमेशा ये बोलते हैं कि आप माता पिता का सेवा त्याग करके जा रहे हो, देखो तुम्हारे कितने अच्छे महान भक्त हुए जिनका नाम है पुंडलिक, वो अपनी माता पिता का सेवा करके अपनी सिद्धि को प्राप्त किया, और बहुत सारे वेदों की बातें प्रस्तुत करते हैं। लेकिन ये भक्त जो है अविचलित होते हैं, क्योंकि उनका कृष्ण में आसक्ति हो गया। जैसे नंद महाराज के सामने बड़े बड़े गोपवृंद आके बोलते थे कि आप अपने बच्चे में इतना क्यों आकृष्ट हो, हमेशा अपने बच्चे के बारे में बात करते रहते, इतना आसक्ति अच्छी बात नहीं है, लेकिन नंद महाराज को कुछ फर्क नहीं पड़ता था। भगवत गीता में बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, श्रोतव्य श्रुतयस्य च, जो सुना है, जो सुनने वाला है, जो सुन रहा है, उसके प्रति जरा सा भी उनको ही विल बिकम इनडिफरेंट द वैदिक इंजंक्शंस। तो वैसे हो रहा था नंद महाराज के प्रति भी, क्योंकि कृष्ण के सारे जितने भी लीलाओं को ये वाल वाल वर्णन करते थे, ऐसा वर्णन करते जोर जोर से वर्णन करते थे, या वैसा वर्णन करते थे कि एक पोएट्री के रूप में, एक गीत के रूप में वर्णन करते थे, ताकि सब लोगों को आनंद से वो कृष्ण लीलाओं को चर्चा में पूरा समय वो बीतते थे। तो ऐसा हुआ, तो ये जो अगासुर और दूसरा आने वाला जो लीला ब्रह्म विमोहन लीला, याघासुर का लीला जो है वो एक साल तक मुगल वालों ने नहीं कहा, एक साल तक, एक साल के बाद वर्णन कर रहे थे कि ऐसा वर्णन कर रहे थे कि आज ही हुआ। जैसे अगर एक साल पहले की बात हो गया हो, एक घटना है, तो एक साल पहले हुआ था करके बोलना चाहिए। लेकिन जब ग्वाल बाल ये अघासुर का लीला को वर्णन किए अपने घर में, तो ऐसा वर्णन कर रहे कि आज ही हुआ, लेकिन अस्तित्व में वो एक साल के बाद वर्णन कर रहे थे। तो तुरंत परीक्षित महाराज को ये प्रश्न आया, ऐसा क्यों? तब भगवान सुखदेव गोस्वामी ने ये लीला का वर्णन किया। क्या लीला का वर्णन किया? ब्रह्म विभुवन लीला का वर्णन किया। क्योंकि ब्रह्मा जी ने क्या किया, अघासुर का वध होने के बाद ब्रह्मा जी ने क्या कि सारे ग्वाल बालों को वो छुरा लिए थे, ग्वाल बालों को चुरा लिए थे, तो एक साल तक वो छुरा के रखे थे, फॉर वन ईयर। तो एक साल तक कृष्ण ही ग्वाल बालों के रूप में विस्तार किए थे। अभी कृष्ण जाके स्वयं थोड़ी ना कहेगा कि मैंने ये किया वो किया, तो कृष्ण ने अपने ग्वाल बालों के रूप में जो विस्तार किए थे, अघासुर का लीला को वर्णन नहीं किया था। तो ये परीक्षित महाराज इस बात को उत्सुकता से उन्होंने पूछा, ये प्रश्न पूछा। जैसे परीक्षित महाराज ने प्रश्न पूछा, तो तुरंत क्या हुआ कि सुखदेव गोस्वामी कृष्ण के लीलाओं का उनको स्मरण में इतना उनको भावभोर हो गए कि ऑलमोस्ट बेहोश हो गए थे। तब आचार्य लिखते हैं, तो उस समय जब सुखदेव गोस्वामी और लीला, बहुत सारी लीलाओं का शेष है, अगर आप इधर ही वो भावभोर होकर अभी उनका कंठ गदगद हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, अभी और लीलाओं को श्रवण करने का मौका नहीं मिलेगा। तब उस सभा में व्यासदेव बैठे थे, सुखदेव गोस्वामी की सभा में नारद जी बैठे थे, और भी बहुत सारे लोग बैठे, महान ऋषि बैठे थे। वो सब लोग ने क्या किया, जय हो जय हो जय हो करके जोर जोर से चिल्लाने लगे, हरी बोल, जैसे हम हरी बोल बोलते वो लोग जय हो। तब ये बात सुनकर तुरंत सुखदेव गोस्वामी फिर खड़े हो गए, फिर से कृष्ण का लीला है जो आगे जो ब्रह्म विभुवन लीला है वो वर्णन करने बैठ गए। तो ये अघासुर किसको सूचित करता है? अघासुर का एक बड़ा दोष ये था कि वो कृष्ण और ग्वाल बाल इतने सुंदर मधुरता से लीला करते, इतने आनंदित हो रहे थे, अघासुर को देखा नहीं गया इनका आनंद को। ही कुड नॉट टॉलरेट अदर्स हैप्पीनेस। ये जो दूसरों की जो सुख को या आनंद को सहन नहीं कर पाना, इसको ईर्ष्या बोला जाता है। जब व्यक्ति इतना ईर्ष्यालु हो जाता है, वो तो आनंद में, सुख से आनंद में भोग रहे। उन्होंने बाल बालों ने आके अघासुर को चिढ़ाया नहीं, कुछ नहीं किया, फिर भी अघासुर जाके जबरदस्ती जाके उनको मारना चाहता, यह है ईर्ष्या। तो ये ईर्ष्या को सूचित करता है। ईर्ष्या से उत्पन्न हुआ जो जो द्वेष है, दूसरों के प्रति वध करने का, उनको मारने का, इस प्रकार की द्वेष है, इसको सूचित करता है अघासुर। तो ईर्ष्या और एक जगह भी आता है, वो है कालिया। कालिया भी सांप था और अघासुर भी सांप था, वो दोनों एक ही अनर्थ को सूचित करते हैं, ईर्ष्या। ऐसा बोला जाता है कि सांप और बिच्छू, ये दो ऐसे जानवर हैं जिनको वध करते हुए संत लोग बहुत आनंद लेते हैं। तो एक बार प्रभुपाद जी की यही घटना है, वो प्रभुपाद जी बक्सीनाथ ठाकुर के मठ में, गोड़िया मठ में, जब उधर चैतन्य मठ में मायापुर में थे, तो उस समय बक्सीनाथ ठाकुर ने एक सांप को देखा था। तब तुरंत उन्होंने बोला अपने शिष्यों को, जाओ उसको मारो। तो वो उसको मार रहे थे और भक्तिनाथ ठाकुर बहुत आनंदित हो रहे थे, उनको देख बहुत खुश हो रहे थे। तो प्रभुपाद जी को ऐसा लगा, मन में बात आया, अरे ऐसे कैसे, तू संत है, गुरु है, और एक सांप का वध हो रहा है तो ये कैसे खुश हो रहे। तो प्रभुपाद जी के मन में थोड़ा डाउट आया, लेकिन वो अपने मन ही मन में रहा। लेकिन बाद में जब प्रभुपाद जी स्वयं कहते, मैंने जब एक पूरा अलग अलग शास्त्रों को पढ़ने लगा, शास्त्रों में मैंने एक श्लोक को देखा जिसके अंदर लिखा है, संत लोग जब ये बिच्छू और सांप को मरते हुए देखते हैं बहुत आनंदित होते हैं। क्यों? ये बिच्छू और जो सांप है ये ईर्ष्या का प्रतीक है, जब ईर्ष्या को नाश होते हुए देखते हैं तो उनको बहुत आनंद आता है। ये सांप और बिच्छू ऐसे है, और बिना कोई आप बिना कुछ कोई व्यक्ति अगर दोष के वो स्वयं आके उनको मारने के लिए, उसको ढसने के लिए आते हैं। सांप जा रहे हैं, वो आपने कुछ सांप को कुछ किया नहीं, लेकिन फिर भी वो आके आपको ढसने के लिए आता है। ये ईर्ष्या का, ईर्ष्या व्यक्ति का स्वभाव है। तो ईर्ष्या से कैसे मुक्त होना है और ईर्ष्या है क्या, इसके बारे में हम अभी चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि कालिया और ये दोनों, दोनों सांप ही है, दोनों ईर्ष्या है, दोनों एक ही जैसा है। तब कालिया का जब लीला का चर्चा करेंगे तब हम ईर्ष्या के बारे में चर्चा करेंगे। तब हम इधर ही अघासुर का जो लीला है वो समाप्त करेंगे, और अगला जो लीला है ब्रह्म विभुवन लीला, वो बहुत गहरा विषय वस्तु है, वो भी हम कल चर्चा करने के लिए प्रयास करेंगे। हाउ ये भगवान ने ब्रह्मा जी का जो विमोहन को उसको दूर किया करके। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न अभी तक पूछे?
Today, because we talked about simplicity, sometimes these two can intermix. One may think that I am acting as a simple one, but this may be the childish behavior. So how can?
उनका प्रश्न ये है कि कल हमने वत्सासुर के बारे में चर्चा किया और अभी आप ये सिंप्लिसिटी सरलता ये दोनों एक ही जैसा लग सकता है। सही बात है, एक ही जैसा लग सकता है, लेकिन अंतर ये है, ये जो सिंप्लिसिटी है सरलता है, ये सरलता के साथ गंभीरता भी होना चाहिए। ये सरलता और गंभीरता दोनों परस्पर विरोधात्मक चीजें लग सकता है। दे मे बी सीम टू बी एंटागोनिस्टिक टू ईच अदर। ये गंभीरता से युक्त जो सरलता है ये अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं उसके अंदर। गंभीरता मतलब क्या है? ग्रेविटी, यू नो यू आर सीरियस एट द सेम टाइम वेरी सिंपल ऑल्सो। ये जो बचपना है वो इंद्र तृप्ति की ओर प्रवृत्त करने वाली चीजें हैं, लेकिन ये सरलता है भक्ति की ओर प्रवृत्त करने वाली है। विच एनकरेजेस यू टू परफॉर्म मोर डिवोशन, टू हैव गुड फ्रेंडली कॉर्डियल रिलेशनशिप विद सीरियस सिंसियर डिवोटीज। जैसे प्रभुपाद जी, वो बहुत गंभीर थे और साथ साथ में उनकी बहुत सारे जो बातें हैं कितना सिंप्लिसिटी था। इसलिए भक्तों की जो जीवन चरित्र पढ़ना बहुत आवश्यक है। महान आचार्यों के जीवन चरित्र, श्री प्रभुपाद जी की, भक्तसिंह ठाकुर की, और भी जो जीवन भक्तों के जीवन चरित्र की सरलता जीवन चरित्र पढ़ेंगे तो हम इन गुणों के जो सूक्ष्म विचार है वो हम जान सकते हैं। तो ये बात है। श्री प्रभुपाद एक बार एक छोटा सा उदाहरण दिया जाए कि ऐसा उन्होंने एक रास्ते में जा रहे थे, उन्होंने अंग्रेजी में एक शब्द था, वो शब्द क्या मैं भूल गया, वो पढ़ रहे थे, वो पढ़ने को नहीं हो रहा था क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड शब्द था, वो कभी जानते नहीं थे प्रभुपाद जी क्या शब्द, तो वो पढ़ने के प्रयास करते, उनके बाजू में उनके शिष्य थे तो उन्होंने पढ़ के बराबर सुनाया ये शब्द है। तो प्रभुपाद ने उनसे पूछा व्हाट इज द मीनिंग, तो भक्त ने उनको प्रभुपाद जी को इसका मतलब बताया, तो वो वेरी नाइस आई नोट इट डाउन, तो प्रभुपाद जी ने नोट करके रखा। तो असल में प्रभुपाद जी उन्होंने इतने सारे ग्रंथों को रचना किया, सब कुछ किया, लेकिन फिर भी उनको ऐसा नहीं लगा कि नहीं मेरा शिष्य मैं क्या सीखूंगा, मैं जानता हूं, अगर नहीं भी जानता तो मैं दिखाऊंगा कि मैंने, ही डिड नॉट एक्ट लाइक दैट, इट वाज क्वाइट सिंपल, व्हाट इज दिस, ओह इट्स नाइस वर्ड, आई कैन यूज दिस सम टाइम, अगेन सिंपलिसिटी, एट द सेम टाइम ही हैड द ग्रेविटी। अगर कोई कुछ लोग आके कुछ आलतू फालतू प्रश्न पूछते थे तो प्रभुपाद जी जो है यस, कभी कभी उसका जवाब नहीं देते थे, वो जवाब नहीं देते हुए दे देते थे। तो ये जो है उनका सरलता है और साथ साथ में ग्रेविटी भी, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस क्वालिटीज। ठीक है, गॉड
that Chaitanya tells that the material world lies in a corner of spiritual world, but I have also heard, if I am not wrong, that material creation is 1/4 of spiritual creation.
Tripadurthai purushah ek pad vibhuti tripad vibhuti, one corner, 1/4. Actually the material world itself is unlimited, the spiritual world is unlimited, but for the sake of saying that spiritual world is far superior to the material world, it is said that 1/4 and 3/4. Tripata vibhuti, ekapada vibhuti. This material is 1/4. Actually, Krishna is unlimited. Krishna is ananta. So Krishna's creation is unlimited. If you divide unlimited by 4 or 3 or anything, unlimited is unlimited. Infinity divided by 3 is what? Infinity. Infinity multiplied by 3 is also infinity. So that's the thing. But just for the sake of this thing, the Purusha Sukta says this. Sahasra Sirsha Purusha Sahasra Aksha Sahasra Paan. In that this verse comes. Tripad Urdhet Purusha, one who stays in the Tripad Jagat, Egapad Jagat. That's the thing.
that other person trying to use that person because other of that centricity. So how should we tackle thing?
इनका प्रश्न यह है कि अगर हम बहुत सरल बनेंगे तो दूसरा जो व्यक्ति है हमारा जो सरलता का गलत फायदा उठाना चाहता है तो हम कैसे उसको कर सकते हैं। ये बात ध्यान में रखना चाहिए, हमारी जो सरलता की जो भावना है वो अभक्तों के बीच में प्रकट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि बी ए टाइगर इन फ्रंट ऑफ नॉन डिवोटीज एंड ए लैम इन फ्रंट ऑफ डिवोटीज। ठीक है, जो कृष्ण को भजता है वो बहुत चतुर होता है। तो अभक्तों को सामने ये सरलता उल्लू बन के रहना नहीं चाहिए, लेकिन भक्तों के सामने वन शुड बिहेव ए हैव ए सिंपल रिलेशनशिप विद देम, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कोई प्रभुपाद जी जब करते थे जो अलग बिजनेस डील्स करते थे, किताब छापने का किसे व्याप सब करते थे, वो बहुत कड़क थे, बहुत चतुर थे। वो बोलते थे कि एनी बडी हु कम्स टू डू बिजनेस विथ यू वो बहुत धोखा देने के लिए आता है, तो इसलिए आपको बहुत चतुर से चतुराई से व्यवहार करना होगा। अगर आप सो ऐसा नहीं हो पा रहा है तो आप उस प्रकार की सेवा को स्वीकार मत करो जहां भावक्त लोग हैं, भक्तों के संग में जो आपको बहुत सरल रहना जरूरी है। और भक्त लोग आपको आपकी सरलता की वजह से आपका फायदा ले रहे हैं बहुत अच्छी बात है, सेवा हो रहा है, व्हाट इज द प्रॉब्लम। अगर आपकी सरलता का फायदा ले रहे भक्त लोग, असल में हमारा जीवन भक्तों के फायदा के लिए ही, इट इज फॉर देयर सर्विस, सो यू कैन टेक दिस थिंग। अगर आपका ऐसा सेवा दिया गया है, मंदिर में कोई जिम्मेदारी का सेवा, मैनेजमेंट का सेवा दिया गया है, उस समय भी आपको बहुत चतुराई से, जिस प्रकार रामानंद राय ने चैतन्य महाप्रभु के साथ किया था, तो प्रतापरुद्र को चैतन्य महाप्रभु से मिलाने के लिए, तो वैसे ही भक्तों के साथ भी आप थोड़ा सा डिप्लोमेसी कर सकते हो ये भावना के साथ, ताकि ये भक्त है वो कृष्ण के और नजदीक जा सके, वो कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन।
प्रताप रुद्र से मैं मिलूंगा नहीं क्योंकि वो स्त्री एंड धन के संस्पर्श में, लेकिन चैतन्य महाप्रभु के बहुत सारे जो पार्षद थे
गृहस्थ का कोई प्रॉब्लम नहीं है।
प्रॉब्लम ये था कि चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद प्रताप रुद्र से इसलिए मिला क्योंकि वो राजा है। राजा हमेशा, वो राजा जो पदवी है, द पोस्ट ऑफ राजा एंड द किंग, तो वो पाउंड शैली में हमेशा उतना धन है, इतना ये है, उसके बारे में सोचते रहते। तो इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने मना किया था। चैतन्य महाप्रभु अलग अलग लीलाओं में अलग अलग प्रकार की उन्होंने उपदेश देते, तो इसलिए हम दो लीलाओं को क्रॉस कनेक्शन नहीं कर सकते। जैसे आप देखिए छोटा हरिदास की लीलाओं, चैतन्य महाप्रभु सारे वैराग्यों को शिक्षा दे रहे। क्या शिक्षा दे रहे? अगर आप स्त्री का संभाषण करते हो तो चैतन्य महाप्रभु कृपा कभी प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, और वही चैतन्य महाप्रभु क्या ने क्या किया, जब काला कृष्णदास को दक्षिण भारत लेके गए थे, उधर भट्टारियों के साथ वो तो नाचने लगा, वो तो इंद्रतुति की वासना से वो चला भी गया था, उन्होंने कुछ जादू करके लेके भी गए थे, तब श्री चैतन्य महाप्रभु सारे भट्टारियों को बरका गए, काले कृष्णदास को फिर से अपने पास रखा, उनको डांटा। तो वो चैतन्य महाप्रभु छोटा हरिदास को इतना दंड दिए, वही चैतन्य महाप्रभु इतना गहरा, छोटा हरिदास किसके पास गया था, ही वेंट टू सिक्की मायती के पास गए थे, वेंट टू सिक्की मायती, जो चैतन्य महाप्रभु का पार्षद है, वो बुढ़ी औरत है, जो ओल्ड लेडी, वो भी चैतन्य महाप्रभु को सेवा के लिए कुछ भीख मांगने के लिए गया था, उन्हें कोई दोष नहीं था, लेकिन फिर भी चैतन्य महाप्रभु इतना कड़क हो गया, इतना सीरियस। वही चैतन्य महाप्रभु ये काले कृष्णदास जितना वो इंद्रत्व में मग्न था, वैसे व्यक्ति को बाहर खींच के अपने पास ही रखे जब तक वो जगन्नाथपुरी वापस नहीं आए। तो अलग अलग लीलाओं में अलग अलग उपदेश हमको प्राप्त होता है। तो इस लीला में चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार को उपदेश दे रहे हैं कि वैराग्यों को, सन्यासियों को, ये जो राजा है वैसे लोगों का एकदम कनिष्ठ संगति नहीं करना चाहिए, उसे दूर रहना चाहिए, ताकि लोग क्या कहेंगे, अभी देखो ये राजा के पास जा रहा है ताकि उसको पैसा मिलेगा, ये सन्यास देने के बाद वैसा कर रहा है। तो लोग, तो सन्यास कपड़ा जो धारण करता है वो ऐसा है कि सफेद कपड़े के ऊपर छोटा सा भी दाग है, तो क्या लोग सोचेंगे, तो उस दो काला सा दाग देखेंगे। तो इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि सरोज दामोदर से तुम क्या सोचते हो, उचित है मुझे सन्यासी इससे मिलना, प्रताप से मिलना? तो ऐसा ऐसा बोलते थे। लेकिन ये लीडरशिप में जो रहता है उनको दो बातों को ध्यान में रखना चाहिए। जो एक है सफेद कपड़े के ऊपर काला दाग, तो लोग क्या से क्या देखेंगे? काला दाग को देखेंगे। लेकिन चांद में भी काला दाग है कि नहीं? लेकिन वो चांद के ऊपर काला दाग होने पर भी वो उस कालापन को देखेंगे नहीं, चांद का गुणगान करेंगे। तो इसलिए जब मैं एक अधिकारी के स्तर में हूं तब मुझे कौन सा उदाहरण को लेना चाहिए? सफेद कपड़े के ऊपर काला दाग। मैं एक अधिकारी के स्तर में हूं, मैं एक सन्यासी हूं, मैं एक वैरागी हूं, मैं एक मठ का अधिकारी हूं, तो वो अगर मैं कुछ छोटा सा भी गलती करूंगा लोग क्या सोचेंगे, क्या देखेंगे? वो गलती को ही देखेंगे। वो इतना उन्होंने अच्छा काम किया, उन्होंने ये किया वो किया, उसको कोई देखेगा नहीं। ये जनता का स्वभाव है, ये अधिकारी को ये बात सोचना चाहिए। इसलिए वो छोटा सा दाग से भी बचने के लिए प्रयास करना चाहिए। लेकिन अगर हम फॉलोअर है, मतलब साधारण जनता है, जब हम कोई अधिकारी को देखेंगे अगर थोड़ा सा कुछ उनके अंदर कालापन है, यानी कुछ कुछ ऐसा कुछ छोटा मोटा कुछ गलतियां हो रहा है या व्यवहार में या कुछ भी किस भी है, तो हमको सोचना चाहिए चांद भले ही उसके अंदर दाग है वो प्रदूषित नहीं है। हमेशा वो सलाहना के इज ऑब्जेक्ट ऑफ ग्लोरिफिकेशन। तो ये दोनों लागू होता है। ठीक है, ठीक है, बस।